हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 52। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु अर्गारंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नमोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सूत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद आठवां अध्याय जिसका शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक नंबर 42। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, यथा पंकेन पंकांभ सुरया वा सुराकृतम भूत हत्याम तथैवैकम् न यज्ञे माष्टुम् अर्हति। यथा पंकेन पंकांभ सुरया वा सुराकृतम् भूत हत्याम तथैवैकम् न यज्ञे माष्टुम् अर्हति। यथा पंकेन पंकांभ सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्यं तथैवैकम् न यज्ञेर्मा अष्टमर्हति। यथा अर्थात जिस तरह पंकेन यानी कीचड़ से, पंकांभ यानी कीचड़ मिश्रित जल, सुरया यानी मदिरा से अथवा सुराकृतम मदिरा के स्पर्श से उत्पन्न अशुद्धि, भूतहत्याम तथा वायकाम, भूतहत्या मतलब पशुओं की हत्या तथा उसी प्रकार एव निश्चय ही एकाम एक न कभी नहीं यज्ञ यज्ञों के द्वारा माष्टुम अर्थात प्रायश्चित करना अर्हति यानी संभव है। अनुवाद, जिस प्रकार गदले जल को कीचड़ में से छान कर नहीं निकाला जा सकता अथवा मदिरा के दब्भे लगे पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार पशुओं की बलि द्वारा नरसंहार का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है वास्तव में पशुओं के वध करने के लिए नहीं थे। भगवान चैतन्य ने बताया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवनदान दिया जाता था। यह वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्र का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम लोगों द्वारा किए जाते हैं तो वे पशु बलि के दोष बनते हैं। इस कलह तथा कपट के युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करवाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाले पट्टु ब्राह्मणों का अभाव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुति यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया है। लेकिन किसी को पशुवध करने के बाद ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते, लेकिन वे क्षत्रिय धर्म करने के से कभी भी पीछे नहीं हटते, जैसा कि भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था। अतएव जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए की जाती है तो सारा काम बन जाता है, यह भक्तों के लिए ही संभव है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती महारानी द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा शीर्षक आठवें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। अत्यंत ही सुंदर वेद व्यास जी के द्वारा हम श्रीमद् भागवतम के आज आठवें अध्याय को, प्रथम स्कंद के आठवें अध्याय को संपन्न किया। अत्यंत ही सुंदर हमने कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के विषय में पढ़ा और हमने देखा कि भगवान इन कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से इतना प्रसन्न हो गए कि परमेश्वर जा नहीं पाए। वो जा रहे थे, तैयार भी हो गए थे, चलकर भी ना जा सके। और उसके बाद हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को कहा कि आप कुछ दिन के लिए रुक जाइए, आप यहाँ हैं तो हम सबको संतुष्ट है, आप कुछ दिन रह जाइए, उसके बाद फिर चले जाएगा। युधिष्ठिर महाराज की शक्ति नहीं, उनकी स्नेह से वो रुक गए, प्रेमणा राज्ञा निवारित। जैसे हमने पढ़ा श्लोक नंबर 45 में कि राजा यादव युधिष्ठिर ने बहुत ही प्रेम से भगवान को रोका, लेकिन जब भगवान रुक गए तो फिर अब कृष्ण के कर्म तो अद्भुत हैं। कृष्ण ने अद्भुत कर्मों के द्वारा युधिष्ठिर महाराज की बुद्धि को ऐसा बना दिया कि वो बहुत दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए कि वो किसी के समझाने से समझ ही नहीं रहते। श्लोक नंबर 46 में हमने पढ़ा, व्यासाय दैरीश्वरे हाक्ये कृष्णे अद्भुत कर्मणा प्रबोधितो पितिहासे नाभुद्यते शुचार्पित। कि जितने भी राजा थे, व्यासदेव, धौम्य मुनि, जितने भी ब्राह्मण थे, वो युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे थे कि और इतिहास बता रहे थे कि देखो पहले भी तो इतने सारे अपराध हुए, इतने सारे युद्ध हुए हैं, सब में युद्धों में तो हत्याएं होती हैं, आप अपने आप को कारण मत मानिए। क्योंकि वो इतना अपने आप को कारण मान रहे थे, वो सोच रहे थे कि इतनी सारी हत्याएं हुई है मेरे कारण हुई है, सब हत्याओं का कारण मैं हूं, मुझे लाज नहीं आ रही है, राज को प्राप्त करने के लिए मैंने इतनी सारी हत्याएं की हैं। अब कृष्ण महाराज से तो उनको समझा रहे थे, परंतु यहाँ लिखा है व्यासदेव कहते हैं कृष्ण अद्भुत कर्मणा, कि कृष्ण के कर्म बहुत अद्भुत हैं। वो अंदर से उन्हें समझने नहीं दे रहे थे, बाहर से तो वो समझा रहे थे हाँ बड़े भैया ऐसा तो होता है युद्ध में, आप है ना अपने आप को कष्ट मत दो, दुखी मत हो, लेकिन अंदर से भगवान की इच्छा ये थी कि अब भगवान अपने परम भक्त भीष्म पितामह की महिमा का बखान दुनिया तक पहुंचाए, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को अंदर से प्रेरणा दे रहे थे कि आप मत समझना, वाकई में आपने अपराध किया है। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज अपने दुखों के शब्दों को बताते हैं, श्लोक नंबर 48 में वे कहते हैं अहो मे पश्यता ज्ञानम विधिरूढ़ दुरात्मनः पारख्यस्यैव देहस्य बहव्यो मे क्षोहिणीहिता। कि मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ, मेरा हृदय कितना अपवित्र है, कितना दुरात्मा हो गया हूँ, और अज्ञान मेरे हृदय में कितना घर कर गया है कि ये पारख्य देह जो कि वास्तव में मेरी आत्मा की किसी काम नहीं आ सकेगी, कुत्तों गिद्धों के खाने के, कीड़ों के खाने के काम आएगी, मृत्यु के बाद तो ये राख बन जाएगी, और इस देह को राज्य प्रदान करने के लिए मैंने इतने इतने अक्षौणी सेनाओं की हत्या करा दी, धिक्कार है मेरे जीवन पर जो मैंने इतने बड़े बड़े अपराध किए। जब उन्हें कहा कि भाई युद्ध में तो हत्याएं होती ही है, तो फिर आप इतना दुखी मत हो, तो वो कहने लगे बाल द्विज सुहृण मित्र पितृभातृ गुरु द्रोह निरयान मोक्षो यपि वर्षायुतायुत। मैं मानता हूँ कि युद्ध में तो हत्याएं होती हैं, परंतु ऐसा युद्ध संसार में आज तक भी ऐसा युद्ध नहीं देखा होगा कि यहाँ पर तो युद्ध तो हमेशा दो अलग अलग सेनाओं में होता है, दो अलग अलग ग्रुप्स में होता है। मैंने अपने ही जितने सुहृद थे, मित्र थे, पितृ थे, गुरु थे, भ्रातृ थे, अपने बच्चों की हत्या करवा दी, मैंने अपने भाई को मरवा दिया, मैंने अपने गुरु को मरवा दिया, एक जन्म तो क्या करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी यदि मैं नरक में रह जाऊंगा तो भी मुझे इन अपराधों से कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, मैं करोड़ों करोड़ों जन्मों तक नरक में रहने के योग्य हूँ, राज्य तो मैं नहीं करूंगा। अब अपने ही स्वजनों की मृत देह, उनके रक्त से सने हुए भोजन को मैं कभी भी नहीं भोगूंगा, मैं जंगल में चला जाऊंगा और वहां पर बैठ के तपस्या करूंगा। और आगे कहने लगे जब ब्राह्मणों ने और भगवान ने उन्हें समझाया कि देखो कोई राजा अपने जब राज्य में युद्ध होता है तो जाहिर सी बात है युद्ध के समय तो हत्याएं होती ही हैं, तो जो युद्ध होता है वो धर्म युद्ध होता है, और धर्म युद्ध के समय जब हत्याएं होती हैं तो इससे किसी को पाप नहीं लगता है, बल्कि सब लोग कहाँ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, धर्म युद्ध में जो भी मरते हैं। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, नैनोराग्य प्रजा भर्तुर धर्म युद्धे वदो दिशां इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। मैं मानता हूँ कि यदि किसी की प्रजा की रक्षा करने के लिए कोई राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए युद्ध करता है और सामने वाले जो राज्य जो उस पर आक्रमण कर रहा है ना उसकी प्रजा पर, उसको यदि मार देता है तो उसको अपराध नहीं लगता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। परंतु नवी इति में न तो बोधाय, ये बात मेरे लिए सही नहीं है, ये बात मुझे संतुष्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैं तो प्रजा का पालन कर ही नहीं रहा था। प्रजा का पालन तो युधिष्ठिर कर रहा था, प्रजा का पालन तो दुर्योधन कर रहा था और प्रजा उससे खुश थी। मैंने तो युद्ध प्रजा का पालन करने के लिए नहीं बल्कि राज्य प्राप्त करने के लिए किया है, इसलिए मुझे ये बात जो आप बता रहे हो वो मुझे संतुष्ट नहीं कर रही है। मैं निश्चित अपराधी हूँ और मुझे अवश्य करोड़ों करोड़ों जन्मों तक नरक में भेजा जाएगा, फिर भी मेरे अपराधों का नाश नहीं होगा। तब भगवान उनको एक श्लोक बताते हैं वेद का, और भगवान बोलते हैं, सर्वं पापमानं तरति तरति ब्रह्म हत्यायां यो अश्वमेधाना यज्ञते य उचैनम एनम वेदः। कि वेद में ऐसा लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी होता है, सर्वं पापं तरति, वो समस्त पापों से तर जाता है, तरति ब्रह्म हत्यानाम, और जो अगर वो ब्रह्म हत्या भी करता है ना तो ब्रह्म हत्या से भी उसको छुटकारा मिल जाता है। यो अश्वमेधानाम यजते, जो अश्वमेध यज्ञ करता है और अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान का पूजन करता है, य उच्चैनम एनम वेदः, वेदों में ऐसा लिखा गया है तो वेद में जो लिखा होता है वो तो सब सही होता है। मतलब भगवान उसे समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि क्योंकि आपने अश्वमेध यज्ञ किया है तो यज्ञ करने से जितने भी हमारे ऊपर अपराध लगते ना वो सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। आपको अब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वेद में जब लिख दिया गया है कि सारे अपराध नष्ट हो गए तो आपके अपराध नष्ट हो गए ना, आप क्यों चिंता करते हो। तब युधिष्ठिर महाराज अत्यंत ही शुष्क तर्क करते हैं। शुष्क तर्क का मतलब है, आप जानते हो क्या, कि वो तर्क संस्कृत में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो तर्क करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, तो संस्कृत में ऐसे तर्क को आर्ग्यूमेंट्स जो करते हैं उसको कहते हैं शुष्क तर्क। शुष्क शब्द मतलब ये दिया जाता है। इसमें इसका मतलब क्या है कि उसमें ना कोई रस है, ना कोई बैकग्राउंड है, ना कोई शास्त्र का आधार है, केवल शब्द चातुर्य वर्ड जगलरी होता है और उससे वो सामने वाले को हरा देते हैं। समझ में आ रहा है, जिससे समझो अगर कोई आदमी अपराध कर रहा है तो हम बोले उसे कि ये अपराध करने से मनुष्य नरक में जाता है, हमें ऐसे अपराध नहीं करने चाहिए, और अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। तो हम अगर शास्त्र की बात बता रहे हैं और वहां पर जो सारे लोग बैठे हुए हैं वो शास्त्र को नहीं पढ़े हुए हैं और वो क्या बोलेंगे, अरे क्या बात कर रहे हो, किसने देखा स्वर्ग और नरक, ये सब मिथ्या है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, कोई स्वर्ग नरक होता ही नहीं, पागल हो गए, देखा है तुमने, कोई आया स्वर्ग से आज तक। फिर तो जाहिर है जो बोलेगा वो तो चुप ही हो जाएगा ना, और जब वो चुप हो जाएगा तो फिर उसके वाक्य को सरस तो नहीं माना जाएगा। मतलब रस का मतलब होता है फैक्ट, फैक्ट में जान होनी चाहिए, आधार शास्त्र का है, लेकिन यदि कोई शास्त्र को आधार नहीं मानता है, केवल मानसिक विचार से तर्क करता है, सिर्फ शुष्क तर्क, यानी कि उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई शास्त्र का आधार नहीं, जैसे अभी चार लोग सूर्य को देख रहे हो और अपनी मेंटल इंस्पेक्शन के द्वारा, मानसिक चिंतन के द्वारा ये सोच रहे हो कि सूर्य जो है मेरे ख्याल में इतनी बड़ी थाली के बराबर है, वो बोलते नहीं, हाँ इतनी थाली नहीं, थोड़ी और भी बड़ी होगी शायद, यहाँ से दूर है ना तो दिख रहा इतना है, थोड़ी और, तो मतलब उसके माइंड में इतना ही हो कि वो इतना है, गोल थाली के जितना होगा या बड़े थाल के जितना होगा, इससे बड़ा उसके माइंड में नहीं आता। और वहीं पर यदि कोई शास्त्र पढ़ा हुआ आदमी हो और वो व्यक्ति बोले नहीं नहीं ये सूर्य तो हमारी धरती से करोड़ों करोड़ों गुना ऊपर है, इसलिए हमको छोटा दिखता है, ये तो हमारी धरती से भी बड़ा है, सूर्य का रथ इतना बड़ा है और सूर्य का तो पूरा लोक के थाली के जितना थोड़ा है, तो वो क्या बोले, चुप करो, तुम्हें पता है क्या तुम सूर्य से होकर आयो, सूर्य कैसे इतना बड़ा हो सकता है, दिख रहा था आंखों से देखो ना, आंखों से देखो कितना बड़ा दिख रहा है। अब आंखों से देख कर तो उसको छोटा ही दिखेगा, तो वो चुप के कर जाएगा, बोला हाँ आप अब क्या इनसे बहस करना, समझ में। तो कुछ लोग का ऐसा होता है कि तर्क करने में इतने एक्सपर्ट होते हैं ना कि भले ही उनके पास कोई शास्त्र का आधार नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आपको हरा देते हैं। तो अब तो युधिष्ठिर महाराज का दिमाग तो अप्राकृत हो गया है, पहले वो वेद को एक्सेप्ट कर रहे थे और अब तो अविवेक से भरे हुए, अज्ञान से भरे हुए तर्क दे रहे हैं, शुष्क तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। पता है क्या कह रहे हैं कि आप बोल रहे हो ना कृष्ण कि अश्वमेध यज्ञ करने से सारी हत्याएं सारे पाप नाश हो जाते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ में भी तो हत्या होती है, इसमें भी तो पशु बलि दी जाती है। अब अज्ञान से जो हत्या हो रही है, जो हमने जैसे अभी युद्ध किया, उसको अज्ञानी कहेंगे, भूल कहेंगे, प्रमाद कहेंगे। अब युद्ध तो हो गया, उसमें जो हत्या हुई, उस हत्या का परिमार्जन क्या जानबूझकर हत्या करने से होगा? ऐसा कभी होगा? एक अपराध का नाश करने के लिए, एक अपराध का प्रायश्चित करने के लिए दूसरा अपराध करके क्या ऐसा कभी हो सकता है? असंभव है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि एक अपराध, हालांकि ये एक सत्य है, जब वेद में लिख दिया गया है कि अश्वमेध यज्ञ का करने से हत्या नष्ट हो जाती है, और इस चीज को बहुत ही सुंदर रीति से बताया चैतन्य महाप्रभु के तात्पर्य श्री प्रभुपाद ने बताया कि जब पशु बलि दी जाती है तो मंत्रों के द्वारा उस पशु को डायरेक्ट से भगवान के नाम भेज दिया जाता है, स्वर्ग भेज दिया जाता है, या फिर वापस से उसको डायरेक्ट से मनुष्य, यानी कि उसका कल्याण किया जाता है। और अब क्योंकि ऐसे कलयुग में ये यज्ञ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण नहीं है, इतनी शुद्ध मंत्रों का उच्चारण नहीं है, लेकिन जो पहले यज्ञ होते थे शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा, तो वो बलि हत्या नहीं होती थी, उस बलि से उन पशुओं का कल्याण होता। लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि एक हत्या का परिमार्जन, एक हत्या जो इतनी सारी हत्याएं मुझसे हो चुकी है पहले से ही इस युद्ध में, उनका प्रायश्चित क्या दूसरा पाप करने से होगा? देखिए यहीं पर आदमी वेद के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया देता है, पहले वेद को मानता मानता है फिर बोलता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वेद में लिखा है तो हो सकता है का सवाल ही पैदा नहीं होता, बस होता है। लेकिन आजकल मनुष्य अपनी बुद्धि को बहुत चलाते हैं और शास्त्र के वचनों को एज इट स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसमें कुछ न कुछ तोड़ मरोड़ कर अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हुए उसको बताते। जैसे अब शास्त्र में क्या लिखा हुआ है कि गाय का गोबर बहुत पवित्र होता है, और जब कहीं पर यज्ञ होता है, कोई पूजन होता है, तो आज भी गांव वगैरह में या यज्ञ के स्थान पर गाय के गोबर से लिपा जाता है, और वहां पर आकर देवता विराजमान होते हैं। देवता ये जो हमारे फर्नीचर टेबल कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, वो गाय के गोबर से लिपे हुए स्थान पर बैठते हैं। तो कोई व्यक्ति यदि अपनी बुद्धि से ये सोचे कि एक गाय जो कि अनपढ़ है, उसको शास्त्र भी पढ़ना नहीं आता, श्लोक भी उच्चारण नहीं करना आता, उसका गोबर यदि इतना पवित्र है, तो एक पढ़े लिखे गुरु का या भक्त, जो पढ़े लिखा भक्त होता है या ब्राह्मण होता है, उसका मल कितना ज्यादा पवित्र होगा। तो अपनी बुद्धि को चलाकर वेद के वाक्य को तोड़ मरोड़ के क्या करें, गाय के गोबर की बजाय किसी पढ़े लिखे ब्राह्मण का मल वहां पर लिप्त दे, तो क्या वहां पर कोई बैठेगा? देवता तो छोड़िए, ये मनुष्य जो कि कल नरक में जाने वाले हैं वो भी वहां पर नहीं बैठेंगे। तो इस प्रकार से शास्त्र की बात का खंडन हो रहा है आजकल, शास्त्र की बात को उल्टा करके बता। अब देखिए, कोई सोचे कि भाई शास्त्र में लिखा हुआ है कि शंख जो होता है वो भले ही हड्डी है एक, लेकिन फिर भी वो बहुत पवित्र है। अब हम देखते हैं शंख भगवान को जगाने के लिए यूज किया जाता है, शंख की ध्वनि से भगवान जागते हैं, भगवान का अभिषेक होता है शंख में जल भर के, और उस शंख के जल से जब झंडा लगाया जाता है सबको तो उससे कितनी पवित्रता आती है। लेकिन कोई सोचे कि ये शंख तो जानवर की हड्डी है, अब उस जानवर की हड्डी से इतनी पवित्रता आती है तो फिर मनुष्य की हड्डी, उसकी एक खोपड़ी कितनी ज्यादा पवित्र होगी। उसमें तो अगर कोई वो भक्त है या ब्राह्मण है तो उसकी खोपड़ी में जल रख के हम भगवान को अभिषेक करवाएंगे, क्या ऐसा होगा? क्या ये सही है ब्रह्म वो फिर उसी के द्वारा भगवान का अभिषेक करें खोपड़ी के साथ और उसी से कोई झंडा कोई पिएगा इस जल को, कोई स्वीकार करेगा? ये असल में क्या है, ये केवल और केवल शुष्क तर्क होता है, दूसरों को हराने के लिए बोला जाता है, इसका कोई वास्तविकता नहीं होती उसी की। और उसी तरह का तर्क आज युधिष्ठिर महाराज यहाँ प्रस्थापित कर रहे हैं। वे कहते हैं यथा पंकेन पंकांभ, पंकेन कहते हैं कीचड़ को, यानी कि एक जगह हो बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़ हो, बहुत सारा कीचड़ हो, और दूसरा पंकांभ यानी कि वो पूरा कीचड़ नहीं हो लेकिन ऐसा जल हो जिसमें थोड़ा थोड़ा कीचड़ मिला हुआ हो। समझ में आ रहा? जैसे आपने देखा होगा ना कभी भैंस कहीं जगह पर बैठी हुई होती है, तबेले का पानी होता है उसके अंदर कितनी मट्टी होती है, कितना गंदा पानी होता है, वो पूरा कीचड़ नहीं होता है लेकिन पानी बिल्कुल गंदा होता है। तो यदि कोई सोचे कि ये कीचड़ है ना, उस कीचड़ को उठाकर मैं ये भैंस जिसमें बैठी हुई है वो पानी, पंकांभ कहते हैं थोड़ा कीचड़ मिला हुआ पानी, और पंक को कहते हैं, पंक का मतलब होता है कीचड़ कीचड़। समझ में आ रहा है? यानी कि कीचड़ मिले हुए पानी को यदि कोई कीचड़ से धोने का प्रयास करे तो ये संभव है, ऐसा युधिष्ठिर महाराज ऐसा कह रहे हैं। यदा पंकेन पंकांभ सुरयावा सुराकृत, के या अगर कोई जगह पर मदिरा का डब्बा लग गया है तो आप सोचो कि एक और बाल्टी मदिरा की लेकर आओ और उससे उस डब्बे को साफ करो, है ना, कि पहले से शराब की वजह से वो जगह अपवित्र हो गई और आप सोच रहे हो कि एक पूरी बाल्टी वहां जगह पे गिराए या फिर किसी ने एक ड्रॉप शराब पी लिया तो आप बोलो कि ये इतना बड़ा अपराध कर दिया, अभी आप इसको साफ करने के लिए दो तीन गिलास और गटका दो, तो इससे क्या कभी होगा? नहीं होगा ना। तो उसी तरह से जो हत्याएं पहले से यज्ञ में हो चुकी हैं, युद्ध में इतनी सारी हत्याएं हो गई हैं जिनके पाप का बोझ मुझसे सहन नहीं हो रहा है, और आप कह रहे हो कि अश्वमेध यज्ञ करने से और भी हत्याएं करूं और उनसे मैं और भी ज्यादा हत्याएं करके मैं उस अपराध को कभी धो सकता हूं, ऐसा कभी होगा क्या? इसलिए वह कह रहे हैं भूत हत्या तथैवाय काम, कि भूत हत्या यानी कि इतना सारा नरसंहार हुआ है, इतने सारे मनुष्यों की हत्या हुई है, उससे जी नहीं भरा और आप मुझे कह रहे हो न यज्ञ माष्टुम अर्हसि, कि यज्ञ करके और भी हत्याएं करूं? आपको तो लगा कि श्री कृष्ण आप सब ब्राह्मण हो, आपको इतनी बुद्धि नहीं है कि इतनी सारी पशुओं की पहले से बलि देकर इतना सारा नरसंहार हुआ है और पशुओं की बलि द्वारा नरसंहार का प्रायश्चित हो सकता है? कभी नहीं किया जा सकता ऐसा, अपराध मुझसे हुआ है ना, हत्याएं मेरे कारण हुई है, और अगर ज्यादा हत्याएं होंगी तो उसका अपराध भी मुझे लगेगा, तुम लोगों को नरक में नहीं जाना पड़ेगा, मुझे तुम लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है, मैं राज्य नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं चला जाऊंगा वन में और वन में जाकर मैं तपस्या करूंगा, तपस्या से भी मेरी ये जो मुक्ति नहीं होगी, मैंने जो ये अपराध किया है उसकी मुक्ति तो नहीं होगी, लेकिन मैं यहाँ पर राज करके कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकूंगा क्योंकि मैं अपने अपराध को भूल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों की बात नहीं मान सकता। तो फिर कृष्ण ने कहा कि बड़े भैया आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, हमारे तर्क नहीं समझ में आ रहे आपको, तो चलिए हम भीष्म पितामह से पूछते हैं। वो उनकी उनकी बात को तो आप मानोगे ना, वो तो बहुत ज्ञानी है ना, हमारे पास ज्ञान नहीं है तो उनकी बात तो आप मानोगे। तभी युधिष्ठिर महाराज बोलते हाँ वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। वास्तव में भक्तों कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, अद्भुत कर्म है उस कृष्ण के, जो करना चाहते हैं वो करा ही देते हैं। भगवान जानते हैं कि उनकी ख्याति तो संसार के कोने कोनों में फैली हुई है, इसलिए वो जब संसार में आते हैं तो अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और उनके परम भक्त जो शिष्या पर लेते हुए हैं, आज भगवान उनका मान बढ़ाने जा रहे हैं। तो सारे जितने भी भाई पांडव के हैं और जितने भी ब्राह्मण हैं, वो सब इस बात पर एग्री होते हैं कि अब हम युद्ध भूमि में चलेंगे जहाँ पर भीष्म पितामह हैं, और उनसे उपदेश ग्रहण करके युधिष्ठिर महाराज को संतुष्टि प्राप्त होगी। और इस समय अब क्योंकि कृष्ण भगवान जो युधिष्ठिर से छोटे थे, तो कभी कभी उनको ऐसा लगता था, भले वो मानते थे कृष्ण को, जानते थे, परंतु कभी कभी उनको ऐसा भी माया है भगवान की, क्या कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता था कृष्णा भी छोटा है, भीष्म पितामह जो है ना वो क्योंकि वो वृद्ध हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है हर बात का, तो कोई भी बात पहले भी होती थी ना तो भगवान उनको भीष्म पितामह के पास लेकर जाते, जब वो यस कहते थे ना तब युधिष्ठिर महाराज मानते थे। तो भगवान को याद आ गया और भगवान ने उसी बात को याद कराते हुए युधिष्ठिर महाराज को बोला चलो अभी भीष्म पितामह से पूछते हैं। तो ये सब मिलकर वहीं पर धर्म भूमि कुरुक्षेत्र युद्ध में जा रहे हैं, हम सब भी चलेंगे और भीष्म पितामह का धर्म युक्त प्रवचन सुनेंगे। कृपया साथ रहिएगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।